नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तुर्की से होते हुए मानवीय सहायता पहुंचाने पर बृहस्पतिवार को मतदान के लिए तैयार है। इस बीच रूस ऐसी मानवीय सहायता को जारी रखने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन केवल 6 महीनों के लिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई सदस्य, महासचिव एंटोनियो गुतारेस और 30 से अधिक गैर सरकारी समूह चाहते हैं कि अवधि बढ़ाकर 1 साल की जाए। रूस ने आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा पेश प्रस्ताव के मसौदे में इन संशोधनों की पेशकश की है। परिषद के राजनयिकों ने कहा है कि इस पर बुधवार को देर रात तक विचार विमर्श चलता रहा कि क्या कोई समझौता किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद में इस पर बृहस्पतिवार को मतदान होना है। अगर कोई समझौता नहीं होता तो सीमा पार से 12 महीनों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने के आयरलैंड और नॉर्वे के प्रस्ताव के मसौदे पर सबसे पहले मतदान होगा। अगर उसे 9 मत नहीं मिले या रूस ने इस पर वीटो कर दिया तो रूस के 6 महीने के लिए सामान की आपूर्ति वाले प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा। चीन और रूस ने इदलिब में तुर्की से 2 सीमा चौकियों के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम गेब्रियस ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के स्वरूप ओमिक्रोन के उपस्वरूप BA.2.75 के मामले भारत जैसे कई देशों में सामने आए हैं और स्वास्थ्य निकाय इस पर नजर रख रहा है। गेब्रियस ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, दुनिया भर में पिछले 2 सप्ताह में COVID-19 के मामलों में करीब 30% बढ़ोतरी हुई है। WHO उप क्षेत्रों में 6 में से 4 में पिछले सप्ताह मामलों में वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा, यूरोप और अमेरिका में BA.4 और BA.5 के मामले सामने आ रहे हैं। भारत जैसे देशों में BA.2.75 के मामले भी सामने आए, जिन पर हम नजर बनाए हुए हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के स्वरूप ओमिक्रोन के उपस्वरूप को BA.2.75 कहा जाता है। सबसे पहले इसकी पुष्टि भारत में हुई थी और फिर करीब 10 देशों में इसके मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि विश्लेषण करने के लिए उपस्वरूप के अब भी सीमित अनुक्रम उपलब्ध हैं, लेकिन इस उपस्वरूप में स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर कुछ उत्परिवर्तन होते हैं जो ह्यूमन रिसेप्टर तक पहुँचने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए हमें इस पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दुनिया के अमीर और विकसित देशों के समूह G20 के विदेश मंत्री इंडोनेशिया के बाली प्रायद्वीप में होने वाली 1 दिवसीय वार्ता के लिए जुटने लगे हैं। वैसे तो इस वार्ता का एजेंडा वैश्विक सहयोग और खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके बावजूद इसमें यूक्रेन संकट की गूंज सुनाई देने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि वार्ता से पहले ही इसको लेकर व्याप्त चिंताएं सामने आने लगी हैं। बाली पहुंचने से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के शीर्ष राजनयिक सर्गेई लावरोव कई एशियाई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनका मकसद वार्ता से पहले समर्थन जुटाना और क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत बनाना है। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कई तरीकों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबक सिखाने की फिराक में हैं, जिसमें नवंबर में बाली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की धमकी भी शामिल है। इस साल G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष इंडोनेशिया पर सम्मेलन का आयोजक होने के साथ साथ विश्व पटल पर और अधिक रचनात्मक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी भी है। हालांकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यदि युद्ध जारी रहता है तो वह सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और वीडियो लिंक के जरिए चर्चा पर नजर रखेंगे। रूस की तरफ से कहा गया कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री बाली के लिए रवाना होने वाले हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के निकट यात्री ट्रेन पर हमला करने वाले बंदूकधारियों द्वारा बंधक बनाए गए 50 व्यक्तियों से कम 5 बच्चे शामिल हैं। बच्चों के परिवारों ने बुधवार को ये जानकारी दी। वे बंधकों को छुड़ाने के लिए अधिकारियों से अधिक कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंदूकधारियों ने मार्च के अंत में उत्तर पश्चिमी राज्य कादुना में एक ट्रेन पर विस्फोटकों से हमला किया था और गोलीबारी की थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया गया था। तब से बंधक बनाए गए लोगों के परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआत में बंदूकधारियों ने 100 से अधिक लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन फिर कुछ शर्तों के साथ कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार अब भी 50 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिनमें कम से कम 5 बच्चे शामिल हैं। कदुना पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद जलीगे ने बुधवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हमले के संबंध में हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस बंधकों को खोजने और छुड़ाने के लिए अब भी स्थानीय लोगों से खुफिया जानकारी जुटा रही है। किसी भी समूह ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।